Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सबसे ज्यादा खुश वो व्यक्ति होता है जो सदा लोगों को खुशियां बांटते रहता है। कहीं ना कहीं खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना बांटेंगे वो उतना ही बढ़ेगी। तो इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रिश्तों की, जिसे कहीं ना कहीं एक नाजुक डोर की तरह माना जाता है जो कभी भी टूट सकता है, लेकिन उसे अगर हम एक मजबूत जोड़ बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी पॉइंटर्स है जो हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं?
देखिए, आपने जो नायिका जी शुरुआत की खुशी की, खुशी का हमारे मन के अंदर एक कांस्टेंट सप्लाई है अगर हम चाहें तो। इंग्लिश में एक कहावत है, हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। किसी भी संदर्भ में हम कितना दुखी या कितना सुखी होना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक हम पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक चीज़ आज के समय में हो रही है कि डिप्रेशन, जो कि एक बीमारी के रूप में भी उभर के आ रहा है, डिप्रेशन एक नेगेटिव इमोशन के रूप में भी उभर के आ रहा है, और पिछले 20-25 वर्षों में ये पाया गया है कि डिप्रेशन बहुत तेज़ी से एक जैसे कि दौर चल रहा है। 2020 तक ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी के रूप में उभरेगा, हार्ट डिजीजेस को ओवरटेक करके।
ओके।
और हार्ट डिजीजेस को कॉज करने में भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता। सिर्फ कुछ देर के लिए उदास हो जाना डिप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर वो एक मन की स्थिति बनी रहे और काफ़ी समय तक चलती रहे और उसमें उदासी एक मूड के हिसाब से वो साथ ही साथ व्यक्ति को नींद ना आए या रोना बहुत जल्दी आए या विड्रॉल होना शुरू हो जाए या बहुत सेंसिटिव होना शुरू हो जाए या फ्यूचर के बारे में देख के उसे लगता है कि कुछ भी जीना शायद संभव नहीं है या हर चीज़ उसे नकारात्मक रूप से महसूस हो या नेगेटिव विचार आते रहे, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता।
करेक्ट।
तो उस स्थिति को पहले तो उसे ठीक करना पड़ेगा, चाहे डॉक्टरी इलाज के द्वारा, चाहे थेरेपी के द्वारा, या कुछ तरह की ऐसे प्रिंसिपल्स को अपना के, खास तौर पे अध्यात्म के, जिनका रोल पाया जा रहा है कि व्यक्ति को सकारात्मक सोच और सकारात्मक संवेदना देने के लिए अध्यात्म जो है एक बड़े रूप से उभर के आ रहा है, उसके ऊपर शोध चल रही है। रिश्ते आमतौर पर जो खराब होने की बात हुई, डोर टूटने की बात हुई, क्योंकि जो और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं, चाहे वो काम में आगे बढ़ जाना है या कुछ भौतिक चीज़ों का ज़्यादा मिल जाना है या पैसा ज़्यादा हो जाना है या पोजीशन का ज़्यादा अच्छा हो जाना है, उन सब का एंड पॉइंट भी अगर हम किसी से पूछें कि आप सब क्यों कर रहे हैं, तो एंड पॉइंट होता है कि मुझे जीवन में खुशी मिलेगी।
बिल्कुल।
पर अगर खुशी उसकी वजह से गायब हो जाए या उसकी वजह से वो रिश्ते जो हमें मीनिंग देते हैं, जो हमें रोज़ याद दिलाते हैं कि मैं जीवन में किसी को प्यार करता हूँ, कोई मुझे चाहता है, मेरा भी कुछ वजूद है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत ज़रूरी थॉट है, इमोशन है, अगर वही गायब हो जाए तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। एक जो बे लगाम की मैं कहूँगा भागदौड़ है, उसमें कुछ देर के लिए रुक के अपने इमोशन का सही आंकलन करके और फिर मेरे मन में क्यों किसी व्यक्ति के बारे में या क्यों किसी रिश्ते के बारे में नकारात्मक विचार आ रहे हैं या वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और किस तरह से मैं उसको ठीक कर पाऊँ, इसकी सोच जब होनी शुरू होती है तो पहला हल वहीं से निकलना शुरू हो जाता है।
पर डॉक्टर साहब, इनिशिएटिव मैं ही क्यों लूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरूरी तो नहीं है कि हर बार गलती मेरी ही हो, कई बार गलती सामने वाले की होती है
क्योंकि आपको कष्ट हो रहा
है। ओके,
अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मान लीजिए दूसरे ने भी मुंह सुझाया हुआ है और आप भी उससे नजरें बचा रहे हैं, तो आपकी भी स्थिति तो सामान्य नहीं है ना।
करेक्ट,
आप भी स्टेबल नहीं है ना। आपको भी लग रहा है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगी या करूंगा।
करेक्ट,
तो जब वो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी भी जो क्षमताएं हैं वो कम हो रही है ना।
करेक्ट,
तो क्योंकि मुझे भी कष्ट हो रहा है, मुझे अपने कष्ट को कम करना।
पर इनिशिएटिव अगर मैं लूंगी तो क्या मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी? ये भी एक सवाल आता है, क्योंकि जब ईगो की बात करें हम, या फिर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो हर्ट होती है कि मैं इनिशिएटिव हर बार ले रही हूँ। इसमें किस हद तक बात सही है?
देखिए, इनिशिएटिव का कई बार सिर्फ ये मीनिंग होता है कि मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देता। और ये बात शुरू होती है अगर हम कोई रिश्ता खराब होने से पहले सोच लें। एक्चुअली ये सारे थॉट्स बाद में आते हैं।
करेक्ट,
अगर पहले ही आ जाए कि मुझे ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है, मान लूँ मैं इस रिश्ते से मुझे खुशी मिलती है, इस रिश्ते से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और आने वाले समय में मेरा जीवन सकारात्मक रूप से चलेगा। अगर मान लीजिए मेरे पैर और जूते के बीच में एक छोटा सा कांटा है, तो हर बार जब मैं चलूँगा तो वो मुझे तंग करेगा।
करेक्ट,
तो अगर रिश्ता, खासतौर पर जो करीबी रिश्ता है, उसमें कोई कमी है तो मुझे हर क्षण तंग करेगा। तो अगर मैं पहले से सोच लूँ कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, तो अब कुछ समय तक अगर मेरा रिएक्शन जो पहले नेगेटिव होता था उसे मैं करना बंद कर दूँ, ये तो पहल भी नहीं हुई, ये तो अपनी तरफ से। ओके, जब वो चीज़ ठीक हुई तो हिसाब किताब, या तो फिर बचपन से लेके, शायद पुराने जन्म से लेके, एक डायरी बना लें कि कितनी बार उसने पहल की, कितनी बार मैंने की, उसका कोई हिसाब किताब नहीं।
बिल्कुल,
हम हर बार से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें मेरा हाथ ऊपर रहे या मेरा सिर ऊपर रहे या मैं अपना पांव उसके सर पे रखूं, जो भी सिचुएशन है, वो होनी शुरू हो जाती। तो अगर मैं वो नहीं करता हूँ, और कई बार पहल की बात जो है, पहल इज ओनली सेइंग कि हमारा रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं। अब ये पहल भी नहीं हुई एक तरह से, आपने अपनी इंटेंशन दूसरे को बताया। हो सकता है दूसरे व्यक्ति में उस समय बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो उस कड़ी को आगे ना लेके जाए, लेकिन सोचेगा ज़रूर। अगली बार कुछ नकारात्मक करने से पहले आपकी मंशा क्योंकि पॉजिटिव है, तो वो सोचेगा कि अच्छा मैं भी इसे ज़्यादा ना खराब करूँ, या चलो उसने कर भी दिया और मैंने उसे आगे नहीं बढ़ाया, तब भी वो बात वहां तक तो नहीं पहुंची जितनी पहले पहुंचती थी।
क्योंकि समय के साथ साथ, क्योंकि हमने उन्हें इंटेंशन बता दिया। आप ये एकदम सही कह रहे हैं कि अगर मैं बता दूं उन्हें कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल हम उन्हें दे रहे होते हैं कि मैं चीजों को बेहतर करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति, शायद उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा।
एक ये, दूसरी ये कि कई बार हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कि हमें याद नहीं रहते, और एक्चुअली उसमें हमारे मन का एक बहुत बड़ा रोल है।
जी,
हमारा मन अपने आप को हमेशा सही दिखाने की कोशिश करता है।
करेक्ट,
अगर वो ऐसा ना हो तो हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। तो जो हम रिश्तों में, संबंधों में बातचीत चल रही होती है, उस समय कैमरे तो नहीं लगे होते और कैमरे अगर लगे भी तो सिर्फ हमारी बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मन के अंदर जो चल रहा है उसका रिकॉर्ड करने के लिए अभी कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ हमारा अपना मन ही है। तो उस समय में दो व्यक्तियों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जब क्लिनिक में हमारे लोग आते हैं, खासतौर पर पति पत्नी, तो हम उनसे ये कहते हैं कि देर आर थ्री स्टोरीज, योर स्टोरी, हर स्टोरी एंड द ट्रू स्टोरी। और जो ट्रू स्टोरी है वो उन दोनों स्टोरीज से अलग है।
बिल्कुल,
क्योंकि मुझे दूसरे ने जो गलत कहा वो याद रहता, अपना नहीं रहता। उसको उसने जो अच्छा कहा वो याद रहता है, मेरा नहीं रहता। लेकिन सच्चाई जो है वो और ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो ये अगर हम समझ के चलें कि जब गर्मा गर्मी होती है एक दूसरे को दोनों कहते हैं, उसने कहा होगा, मैंने भी कहा होगा, आज नहीं कहा होगा, पहले कहा होगा, या मेरी स्थिति आज ठीक है तो मैंने नहीं कहा, उसकी नहीं है, पर अगर उसकी स्थिति भी ठीक होती तो भी शायद अच्छा होता। तो इतना लीवे तो हमें थोड़ा बहुत अपने क्लोज संबंधों में देना ही चाहिए। अगर हम वो देते हैं तो वो जो एक इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आगे जाके हमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड देगी। हम बैंक्स में ढूंढते हैं ना 4%, दूसरा कोई कहता है 6% अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन रिश्तों में अगर हम थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं तो बाद में जाके, क्योंकि मेरा मन अब एक टेंशन से फ्री हो गया, मुझे दूसरे को देख के परेशानी नहीं हो रही, मैं घर में आ रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, मैं 4-6 घंटे अच्छे माहौल में बिताए, मैं चार्ज हो गया, अगले दिन जाके जीवन में और कई चीजें मैं कर पाऊंगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है।
बिल्कुल। और साथ ही साथ रिश्तों के अंदर एक और चीज होती है कि अगर हम कोई भी रिलेशनशिप अगर मेरा स्ट्रेन से गुजर रहा है तो हमारी खुद की जो अंदर की एनर्जी है वो इतनी ज्यादा उसमें ड्रेन होती जाती है कि हम खुद ही अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगते हैं।
इसका रीजन बताओ
जी।
हमारे पूरे शरीर में जो सबसे एक्टिव ऑर्गन है वो है ब्रेन।
करेक्ट।
जो अच्छे कंप्यूटर्स होते हैं उनको आप बहुत संभाल के रखते हैं, अच्छा एसी रूम होता है, डस्ट फ्री होता है, बार बार उसको जिस तरह के वायरसेस हैं उनको निकाल दिया जाता है, यहाँ के वायरस को हम ध्यान नहीं रखते। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फास्ट और सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर है जो बचपन से लेके एंड तक चलता रहता है। इसमें जब, क्योंकि इतना फास्ट है, इतना काम करता है, तो ये एनर्जी बहुत लेता है। आमतौर पे देखिए हमारा जो पूरा बॉडी है उसका जो वेट है उसके हिसाब से हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ 2% का, लेकिन 25% ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेता।
अच्छा।
इतना काम करता है।
ओके।
ब्रेन के अंदर जो कि माइंड का सबस्ट्रेट है, करीबन 1 ट्रिलियन सेल्स हैं जो कि हमेशा काम करते रहते हैं। और आप अगर रिश्तों की बात कहते हैं तो ब्रेन के सेल के, हर सेल के 10,000 सेल्स के साथ कनेक्शन है।
ओके।
फेसबुक पे भी किसी के नहीं होंगे।
करेक्ट।
तो वो जो कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस बने हैं कि वो अपना काम सुचारू रूप से चलाते रहे।
जी।
जब नकारात्मक विचार शुरू होते हैं तो उन कनेक्शंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्सेस हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती
है।
तो जब वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं तो ब्रेन की ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं होती। वी आर नाउ रियलाइजिंग कि जहाँ पे लोग तनाव में हैं या रिलेशनशिप्स खराब हैं या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उनके ब्रेन की जो ग्रोथ है, उनके ब्रेन की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, कई बार धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है।
ओके।
तो जब हम नकारात्मक रूप से सोचते हैं तो ब्रेन एक्स्ट्रा काम कर रहा है और इसीलिए हम थक जाते हैं। तो अगर हम उस चीज को ब्लॉक कर देंगे तो हम एक तरह से अपने ब्रेन को भी बचा रहे हैं, अपने माइंड के फंक्शंस को भी फ्री कर रहे हैं और उसको जहां पे लगाने की जरूरत है जीवन के और हिस्सों में या सेल्फ ग्रोथ में वो भी करते हैं।
दिस इज सो ट्रू एंड ये बहुत नई बात आज हमें पता चली है, क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे पूरे शरीर पर हमारी थॉट्स का कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ये रियलाइजेशन हो जाए तो हम ऑटोमेटिकली इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे।
आपको एक और सीक्रेट बताता हूं।
जी।
बॉडी का हर हिस्सा
जी
हमारा माइंड बनाता
है। ओके।
बॉडी के हर सेल्स धीरे धीरे रिप्लेस होते रहते हैं और वो सेल्स जो कि ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि त्वचा के सेल्स हैं कॉन्स्टेंटली ये फ्रिक्शन में आ रहा है, या पेट के सेल्स हैं, वो सेल्स जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं 5 दिन से लेके 30 दिन में, और जो सबसे हार्ड हैं यानी बोन के सेल्स उसको रिप्लेस होने में 3 से 7 साल लगते हैं, पर 7 साल के अंदर हमारी पूरी की पूरी बॉडी रिप्लेस हो जाती
है। ओह, ओके।
वो नए सेल्स को बनाने वाला जो है वो मेरा माइंड है, और मेरा माइंड जो है वो पुरानी मेमोरीज के साथ चलता रहता है। तो अगर वही पुराना आपने 2006 का अगर कंप्यूटर प्रोग्राम लगा रखा है वर्सेस 2014 का, तो दोनों में फर्क है। और अगर पुरानी मेमोरीज ही चल रही हैं तो उसी के साथ साथ जो नया शरीर बन रहा है या नए जो हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं वो भी डिजीज हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हमें पता लगना शुरू हो कि इसकी वजह से मुझ पर क्या असर हो रहा, संबंधों पर जो हो रहा है अलग बात है, अपने बहुत किसी क्लोज व्यक्ति को भी तो मैं कष्ट दे रहा हूँ ना। देखिए मान लीजिए कोई बाहर वाला मेरे भाई बहन वाइफ बच्चों को कुछ कहे तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अगर उन्हें खुद ही अपने आप ही प्रताड़ित कर रहा हूँ तो वो तो अपोजिट हो गया ना। तो अगर मैं उनको भी बचा सकता हूँ, मैं अपने आप को भी बचा सकता हूँ, तो फिर वो रिश्तों में सकारात्मक लाने की ही बात है। और उसमें किसने पहल की खास फर्क
ये शुरुआत तो मैंने ऐसे की थी कि ये बोल करके कि इनिशिएटिव मैं क्यों लूँ, लेकिन आपके इस जवाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिटी है कि अगर मुझे अपने अंदर में सब कुछ हेल्दी रखना है तो इनिशिएटिव मुझे ही लेने की ज़रूरत है।
देखिए कई शोध हुई हैं अभी और ये ऑलमोस्ट एक साइंटिफिक रियलिटी बनती जा रही है कि अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो मेरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
अच्छा,
ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट चला आज से करीबन 40 साल पहले, उसके बाद कैंसर के ग्रुप्स बने कैंसर सहयोग के, कि वो महिलाएं और जिनको कैंसर ज़्यादा, लेकिन उनके पास एक ग्रुप था जिसके साथ वो बातचीत कर पाती थी, उनसे अपनी बातें शेयर कर पाती थी, तो उनकी बीमारी उतनी नहीं बढ़ी बनिस्पत उनके कि जो अकेले थे।
ओके।
और उनका ज़्यादा देर तक रहने के चांसेस रहे जीवित कंपेयर टू दोज जो कि अकेले थे या जिनके इमोशंस ब्लॉक्ड थे या जिनके इमोशंस के साथ वो घुट घुट के जी रहे थे। ये कैंसर की बात है। और जो छोटी मोटी बातें हैं जैसे कि इन्फेक्शंस हैं, डाइजेशन है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ये तो जैसे ही हम संबंधों में खराबी आती है या हम खुश नहीं होते वो खराब होने शुरू हो जाते हैं।
ट्रू।
तो वो सिर्फ हमारे बाहरी रूप से रिश्तों के लिए नहीं, लेकिन मेरे अपने फिजिकल रूप से भी एंड ऑफ कोर्स मानसिक रूप से। और अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से या ग्रोथ की तो बात ही नहीं कर सकते।
एब्सोल्युटली।
तो जब यहाँ से ऊपर उठेंगे तभी हम और चीज़ों को पा पाएंगे।
डॉक्टर साहब, आज हमारे पास कुछ ऐसे ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं जिनका रिप्लाई हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जी जरूर।
जी,
मेरा नाम राजू कुमार है, मैं मुंबई बोरीवली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, प्रश्न ऐसा है कि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर लिया, हर चीज हमने आने के लिए बड़े बड़े घर बंगला गाड़ी बनाया, फिर भी आपस में स्नेह की कमी, लोग आपस में मिल नहीं पाते, लोग आपस में एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, लोग मुस्कुराने से भी डरते हैं, लोग एक दूसरे को घर में बुलाने से भी डरते हैं, आखिर ऐसा कारण क्या?
कि आजकल यंगस्टर्स अपनी करियर और जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए समय नहीं दे पाते उनकी देखभाल के, तो खुद भी वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल सकते, इतने बिजी हो जाते हैं, तो वो खुद भी अशांत है जिसकी वजह से खुद उनके माँ बाप भी जीवन में अशांति उनके जीवन में ऐसा महसूस होता है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन, क्या क्या करना चाहिए?
डॉक्टर साहब, हमारे ऑडियंस का ये क्वेश्चन है कि लोगों के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है, पहले जैसे लोगों के अंदर मिठास होती थी, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा लगाव होता था, वो कहीं ना कहीं खोसा गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? साथ ही साथ एक दूसरा जो प्रश्न था वो इस तरह से था कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके अंदर में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा काम के प्रति लगाव हो गया है कि अपने पेरेंट्स को वो नज़रअंदाज करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, कई बार खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, इस वजह से वो खुद भी दुखी होते हैं। और पेरेंट्स को भी दुखी करते हैं, ऐसे में क्या किया
जाए? ये दोनों बातें सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घड़ी या तो बदल गई है या अर्थ को घूमने में जितना टाइम लगता है वो बदल गया है। घंटे तो अब भी 24 है एक दिन में, वो घंटे कहाँ गायब हो गए? एक्चुअली जब आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं तो उनमें से कई बार चूज कर पाना मुश्किल हो जाता है। जिन चीज़ों में आपको लगता है कि प्राप्ति होगी उसको आप ज़्यादा ट्राई करते हैं। आज से अगर 30 साल पहले देखें तो सेलफोन नहीं था, एक्चुअली जो दूसरा फ़ोन था वो भी बहुत कम था, टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट नहीं था, घंटे तब भी 24 थे। अब घंटे 24 हैं, उनमें से हमने जिस चीज़ को वैल्यू दिया बाहरी रूप से अचीवमेंट्स को, और जो असल में दूसरा प्रश्न था कि यंगस्टर्स जो हैं वो अपने में इतना खो गए हैं, अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके या उस प्रोफेशन में घुसने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो वैल्यू जो थी वो सोसाइटी ने उनके ऊपर डाली। और वो वैल्यू एक्चुअली हम कई बार पेरेंट्स भूल जाते हैं कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने के लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल का क्यों, क्योंकि आगे जाके उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में, फिर आगे जाके अच्छे से अच्छी जॉब में। अच्छे से अच्छी जॉब का क्या मतलब है? जिसका पैकेज जो है इतना होगा, वर्क्स इतने होंगे, सोसाइटी में ऐसी पोजीशन होगी और हम बड़े फख्र से एज पेरेंट कह पाएंगे कि मेरा बच्चा जो है इस जगह पे ये करता। तो जब हमने शुरू से ही वो ट्रेनिंग देनी शुरू की बच्चों को तो उसके लिए भी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई। और उसमें अगर किसी के घर जाना है ज़रूरी नहीं समझा गया, अगर घर वालों से मिल के बातचीत करना है ज़रूरी नहीं समझा गया, अगर मेरे पेरेंट्स जो कि वृद्ध हैं वो मेरे काम में बाधा बनते हैं, सो कॉल्ड बाधा बनते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने प्रोफेशन को इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। ये जब हमने एक सिस्टम चलाना शुरू किया और उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ आईं, समाज में एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनी, बच्चों को अब तो कई सिटीज़ में इकट्ठे नहीं रहते पेरेंट्स के साथ, वो अलग रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं। कहा जाता है कि मेरा ऑफिस वहाँ से पास पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सिटी में बहुत दूर नहीं पड़ती कोई भी जगह। रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियाँ हो गई हैं, जाने में दूरियाँ नहीं हो गई। तो जब उस चीज़ को सोसाइटी वैल्यू देती है तो रिश्तों की वैल्यू, क्लोजनेस की वैल्यू, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने की वैल्यू, वो ख़त्म हो जाती है। हम कई बार अपने क्लिनिक्स में ये बात सुनते हैं कि जब मुझे प्रॉब्लम हो तो मेरे लिए सब आए, लेकिन जब दूसरे को हो तो मेरे पास टाइम नहीं। देखिए, रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे बाजार से एज अ पैकेज नहीं लाया जा सकता, आपकी जगह कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जितना आप इन चीज़ों को वैल्यू देके उसमें समय लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आएंगे। बिकॉज वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग अनदर थिंग कि जो कंट्रीज़ जिनके पास पर कैपिटा इनकम बहुत है, या हम अपने अगर आसपास भी देखें, कोई व्यक्ति जिसके पास 10 बंगले हैं रह तो एक में ही सकता है, ज़रूरी नहीं है वो खुश हो। अगर वो एक बहुत बड़े मकान में रह रहे हैं और सब सुविधाएं हैं, ज़रूरी नहीं है उनके संबंध अच्छे हों। और वो सिर्फ तभी हो सकते हैं कि जब आपने रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, उसको मजबूती दी है। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब हम सक्षम हो जाते हैं तो हमारा ध्यान उन कोर वैल्यूज़ जिनको कहते हैं, जो कि चाहे फैमिली वैल्यूज़ कह लें या अपने लिए समय निकाल लें उसके लिए कह लें या अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, क्योंकि इन सब मटेरियल चीज़ों का अल्टीमेट एम है कि मैं अंदर से खुश रहूँ और मैं दूसरों में खुशियां बांटूं।
बिल्कुल।
लेकिन हम वहीं पे अभी अटके हुए हैं, वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे। लेकिन द वेरी फैक्ट कि हमारी बातचीत हो रही है, द वेरी फैक्ट कि लोग इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि एक नई सोच की शुरुआत है।
बिल्कुल। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा, जिससे हमारे सारे रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे।
जी
डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें अपनी रिलेशनशिप्स में कोई भी तरीके से बेटरमेंट लाना है तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव हमें खुद लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि अगर रिलेशनशिप्स की हम बात करें, भले वो कितने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसकी पहल और उसकी शुरुआत हमसे ही होती है और इनिशिएटिव हमें खुद ही लेने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने कितनी सारी बातें सीखी, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात आज हमने नोटिस की कि हमारी ब्रेन एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर में कई सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि नेगेटिव भी होती हैं और कई सारी पॉजिटिव भी होती हैं। लेकिन अगर हम हर दिन नए पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करें तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आपके रिश्ते भी और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।